الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشريف قلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی بابرکت محترم اور مقدس رحمتوں اور نورانیت کی برسات میں اس مقدس رات میں ہم اور آپ جانے کونین حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے مقدس سفر معراج کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات میں سے یہ وہ عظیم شان معجزہ ہے معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس پر عقلیں دنگ رہ جائیں یہ وہ معجزہ ہے جو تا قیام قیامت تک ہر آنے والی سائنسی ترقی کو دنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے جس دور میں جس نبی کو مبعوث فرمایا اس دور کی ترقی ظاہری ترقیاں انسانی کمالات اس نبی کے معجزے کی دہلیز پر سرنگو نظر آتے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے وہ مختلف زمانوں کے لیے مختلف مقامات کے لیے مبعوث کیے گئے لیکن میرے پیارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عامہ عطا فرمائی اور تا قیام قیامت بلکہ حشر کے میدان میں بھی انہی کی رسالت کا ڈنکا بج رہا ہوگا. تو ضروری تھا کہ جو جو وقت گزرتا جائے اور انسان ترقی کرتا جائے سائنس کی بنیاد پر یا جس لحاظ سے بھی کتنی بھی ترقی کر لے لیکن دہلیز مصطفیٰ پر اس کو سرنگون ہونا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کے آگے اسے جھکنا پڑے گا. حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ اس دور کے انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان تو نے اپنے دعوے کے مطابق چاند پر کمندے ڈالنی شروع کر دی, مریخ کے سفر کو اختیار کرنا شروع کر دیا, زمین کی حدود سے نکلنے کے دعوے کرنے لگا اور تیز رفتار طیاروں کے ذریعے راکٹوں کے ذریعے بڑی دور دور کی مسافتیں بہت کم وقت میں کرنے لگا. لیکن ان تمام ترقی کے باوجود میرے رسول کی صرف ایک رات شب معراج کے برابر وہ سفر اختیار نہیں کر سکتا, اس سفر کے ایک حصے کے برابر بھی سفر نہیں کر سکتا جس حصے میں میرے آقا جانے کو نین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا. آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر ہم سفر معراج پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کے اندر تمام بڑائیاں جو تھیں جس جس کی جو بھی بڑائی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی تھی ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے اندر خدمت گزار کی حیثیت عطا فرمائی اور یہ بتا دیا کہ بجلی کو جمع کر کے سواری بنا کر ہم نے براق بنایا اور بجلی کتنی تیز ہو اور کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو لیکن اس سفر میں میرے رسول کی خدمت گار نظر آتی ہے. جبریل امی جو سید الملائکہ ہیں, طائر سدرہ ہیں, قوت کا یہ عالم کے پہاڑ اٹھا کر بنی اسرائیل پہ کر دیں, ان کے جسم کی حیات کا یہ عالم کہ اگر ایک پر اپنا پھیلائیں تو مشرق کو ڈھانپ لیں, دوسرا پھیلائیں تو مغرب کو ڈھانپ لیں, اتنا عظیم فرشتہ لیکن میرے رسول کے خدمت گاروں میں نظر آ رہا ہے. آسمان کی بلندیاں میرے رسول کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا اپنے معجزات کے ذریعے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ بڑے بڑے طاقتور ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے. فرعون نہیں ٹھہر سکا, نمرود نہیں ٹھہر سکا, قارون و شداد نہیں ٹھہر سکے, وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رسول کی اقتداء میں کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ فرشتوں میں کوئی افضل ہو, نبیوں میں کوئی افضل ہو, مخلوق میں کس کی کوئی بھی بلندی ہو لیکن یہ ساری بلندیاں میرے رسول کے قدم ناز کے نیچے نظر آتی ہیں. یہ سفر معراج ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اپنی ذات کا پہلے ذکر کیا اور یہاں پر اپنی ربوبیت کا ذکر نہیں کیا, اپنی رحمانیت کا ذکر نہیں کیا, اپنی رحیمیت کا ذکر نہیں کیا, اپنے جبار و قہار ہونے کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنی سبحانیت کا ذکر کیا, اپنی ذات کے پاک ہونے کا ذکر کیا, گویا اپنی ذات کی قسم فرما کر فرمایا میں لے کر جا رہا ہوں. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے, हर किस्म के नक्श से पाक है, कोई भी कमी उसकी जात में नहीं। फरमाया अपनी जात का जिक्र फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। ये इस बात की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये तारीख इंसानियत अव्वलीन और आखिरीन को आजिज करने वाला मौजदा था और सारी बुलंदियां यहां पर हेठ नजर आ रही थी, तो हो सकता था कि दुनिया इंकार कर देती कि ये बात तो अकल से मावरा है, और लोग अभी भी जो हैं हुजूर अलैहि सलाम के मौजदे का इंकार करते हैं। तो रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपनी जात का जिक्र फरमाया। होता है ना जब कोई बड़ा साथ हो और उसके छोटे के लोग दुश्मन हो और वो उसके साथ हो, तो वो कहता है तुम एक तरफ हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं अपनी जात का जिक्र करता हूँ, जो बात करनी है मुझसे करो, इनसे क्यों करते हो, तो मेरे प्यारे मेरे महबूब हैं, जो बात करनी है मुझसे करो। इसी तरह जब मेराज का जिक्र आया फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को, ताकि कयामत तक कोई किसी भी अंदाज में एतराज करने के लिए उठे तो ये समझ ले कि ये एतराज जाते मुस्तफा पे नहीं बल्कि अल्लाह की जात पर होगा। इसलिए सुभान अल्लज़ी फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। अब किसी किस्म का एतराज बाकी नहीं रहा। कैसे चले गए, कैसे नारी कुर्रों से गुजर गए, कैसे लम्हात रुक गए, कैसे एक जमाने का जमाना चलता रहा, वक्त चलता रहा और दूसरी तरफ जमाने को रोक दिया गया, वक्त को रोक दिया गया, कैसे हो सकता है? फरमाया वक्त का खालिक भी तो मैं ही हूँ, वक्त का बनाने वाला भी मैं ही हूँ, जमाने को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। एक जमाने को एक जगह के वक्त को रोक कर दूसरे वक्त दूसरे मकाम के वक्त को जारी करने वाला भी मैं ही हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ले गया तो अब किस बात का एतराज? मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। वो तो ऐसा कुदरत वाला है, उसने अपनी कुदरत की निशानियां दिखाई हैं, वो खुद मुसब्बिबुल असबाब है, उसने इस आलम असबाब में हर चीज के साथ सबब रखा है, हर चीज एक सबब के जरिए एक सिस्टमेटिक तरीके के जरिए चल रही है कायनात के अंदर। लेकिन इसी कायनात के अंदर तमाम तर अंदाजों के साथ चलने वाली कायनात के अंदर रब तबारक व तआला जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपनी कुदरत की निशानियां दिखाई हैं। वो बताता है कि इस आलम असबाब में इंसान के दुनिया में आने के माँ बाप सबब बनते हैं, लेकिन मैंने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है, मैंने हव्वा को बगैर औरत के पैदा किया है, मैंने ईसा को बगैर मर्द के पैदा किया है, मैंने याहिया को जकरिया के बुढ़ापे में अता किया है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो पहाड़ की चट्टान से साले अलैहि सलाम के लिए ऊंटनी निकाल के दिखा सकता हूं और उस ऊंटनी के को औलाद भी अता कर सकता हूं, मैं चाहूं तो एक आन में जन्नती मेंढे को इब्राहिम की छुरी के नीचे रखकर इस्माइल को हटा सकता हूं, क्योंकि मैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। उसने जा बजा अपनी निशानियां दिखाई हैं और बताई हैं कि बेशक आलम अब्बाब में हर चीज सबब के साथ है, लेकिन मैं खुद मुसब्बिबुल अब्बाब हूं, इन असबाब को बनाने वाला भी तो मैं ही हूं, और देखो मैंने बनाया असबाब को भी बनाया और बगैर किसी सबब के भी मैंने अपनी निशानी दिखाई। जब मैं ये सब कुछ कर सकता हूं तो मेरी शान से ये बात बईद नहीं कि मैं अपने हबीब को एक ही रात में कायनात का सफर करा दूं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये सैर अज खुद नहीं कर रहे, मैं करा रहा और सफर अपने घर से शुरू करूंगा और अपने घर पे ही खत्म करूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं हती में काबा में आराम कर रहा था। अल्लाह का मकबूल फरिश्ता बारगाह रिसालत में आता है। अजीम फरिश्ता, फरिश्तों के सरदार को भेजा, हजारों लाखों या जितने भी फरिश्ते होंगे साथ मलाइका के झुरमुट में आए, लेकिन सैयदुल मलाइका को हुक्म है कि मेरे महबूब को इस तरह झंझोड़ना नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि उनके कदम नाश पर अपनी काफूरी आंखें मलना, अपने जिबीन नियाज को उनके कदमों पर झुका देना, क्योंकि तुम किसी आम के बारगाह में नहीं जा रहे, मेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हो। हजरत जिब्रील अमी आ रहे हैं, सैयदुल मलाइका आ रहे हैं, फरिश्तों के झुरमुट को लेकर आ रहे हैं और सरकार के कदम नाश पर तलवों पर अपनी आंखें मल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोल देते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, सरकार सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं हलक से नाफ तक मेरे सीने को चीरा गया, मेरे कल्ब को निकाला गया, सोने के तश्त में रखा गया, आबे दमदम से धोया गया, फिर दोबारा मेरे सीने में कल्ब को रख दिया गया, सीने को बंद कर दिया गया। सरकार फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ। गौर तो करो, आज साइंस किसी की ओपन हार्ट सर्जरी करती है तो दिल के साथ बैटरी लगाती है कि दिल चलता रहे। पहले बेहोशी का डॉक्टर बेहोश करने के लिए चेक करता है आया होश भी आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। सीने अकदस को चीर कर कल्ब अथर को निकाला गया, आबे दमदम से धोया गया, सोने के तश्त में रखा गया। ये सब क्या मामला है? क्या कल्ब अथर को धोने की जरूरत थी? खुदा ना खास्ता कोई उसको में ऐसा मामला था कि उसको धोया जाता। उलमा फरमाते हैं इसकी हकीकत से तो रब जाने और उसका हबीब जाने, लेकिन बात ये थी कि अब तक दमदम को हजरत इस्माइल के तलवों से एड़ियों से निस्बत थी, आज कल्बे मुस्तफा को धोकर आबे दमदम को भी मेराज अता की जा रही थी। सोने के तश्त में रखकर सोने को मेराज अता की जा रही थी और फिर कल्बे अथर को धोकर वापिस सीने अकदस में रख दिया गया, मेरे रसूल को शबे अथरा का दूल्हा बना दिया गया। और फिर सवारी पेश की गई कि हुजूर ये सवारी है जिसको बुर्राक फरमाया गया। बुर्राक बर्क की जमा है और बर्क बिजली को कहते हैं। हम बिजली को हाथ लगाए तो हमें झटका पड़ता है, दूर जाकर गिरते हैं। और वहां रिवायत में आता है जब सरकार तशरीफ फरमा हुए तो वो हिनहिनाने लगा, शोखी दिखाने लगा। ये कोई शोखी का मकाम था? सरदारे अंबिया सवार हैं, शोखी क्यों दिखाई? सूफिया इकराम फरमाते हैं शोखी नहीं थी बल्कि वो अपनी किस्मत पे नाच करके झूम रहा था कि आज मुझ सवारी को ये अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई कि दुनिया का सबसे प्यारा सवार मुझ पर सवार कर दिया गया। और फिर मेरे रसूल तशरीफ फरमा हुए और फिर ये सवारी चली। कितने फरिश्ते होंगे? ला तादाद फरिश्ते थे। ये सब एक इंतजाम था, अपने हबीब को अपने कुर्ब में खास में बुलाने का इंतजाम था। लेकिन रब्बुल आलमीन बड़ा करीम है, वो इस सफर में न जाने कितनों पे करम फरमा रहा है। ऐ हबीब, मक्के में तुम इतनी तकलीफ में रहे हो और हमारी रजा पे राजी रहे, ये मक्के वालों ने तुम्हारी कदर नहीं की। कभी तुम पर ओजड़ी डाली, कभी तुम पर आवाजें कसी, कभी तुम्हें तकलीफ दी, कभी तुम्हें रूहानी तौर पर देनी तौर पर टॉर्चर करने की कोशिश की। अभी तुम मेरे खातिर सबर करते रहे, मेरी रजा पे तुम राजी रहे। अब अभी आओ, अब तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें तुम्हारी शान के मुताबिक सफर कराते हैं। तुम हमारे सबसे प्यारे हो तो तुम हमें हम तुम्हारे ऐसा सफर कराएंगे जो ना इससे पहले किसी को कराया ना बाद में कभी। मेरे आका के कल्ब अथर को तसल्ली दी जा रही। मेरा रब जब किसी की आजमाइश करता है तो उसका फिर बेहतरीन अजर अता फरमाता है। मेरे रसूल से ज्यादा किसी की आजमाइश नहीं हुई। 40 साल तक जिन लोगों ने तारीफ के पुल बांधे थे, सादिक अमीन कहा था, अचानक 13 साल के अंदर ऐसे बदले, अपने भी गैर हो गए। इतनी तकलीफें दी कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से ज़हनी तौर पर अज़ियत देने की कोशिश, जिस्मानी तौर पर सरकार के गुलामों को तकलीफ दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व मनवालुहु अब अपने हबीब को उनके कल्ब अथर को राहत देने के लिए, महबूब अब तक तुम मेरी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ करते रहे, आओ अब हम तुम्हें एक बेहतरीन सफर अता फरमाते हैं। और फिर ये सफर शुरू हुआ, मेरे रसूल का सफर मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा की तरफ हो रहा। मस्जिद अक्सा एक घर से दूसरे घर की तरफ, अपने ही घर से अपने ही घर की तरफ, दो मुकद्दस मस्जिदें उसके दरमियान सफर हो रहा है। एक तेज रफ्तार सवारी है, मेरे रसूल की यह सवारी चली जा रही है। यह जमीनी सफर था, यह वो सफर है जो आज भी कोई बशर किसी सवारी के जरिए कर सकता है। लेकिन जितने जल्दी यह सफर हुआ, आज भी कोई इतनी जल्दी इतना फासला तय नहीं कर सकता। इस तेज रफ्तार सफर के दौरान मेरे आका फरमाते हैं, मैंने कसीब अहमर में हजरत मूसा को अपनी कबर में खड़े होकर सलात पढ़ते हुए देखा। निगाह मुस्तफा का कोई ठिकाना, निगाह मुस्तफा की बुलंदी का अंदाजा करो। मेरे रसूल जब निगाह डालते हैं तो कबर पे ही निगाह नहीं पड़ती, कबर में साहिब कबर को भी देखते हैं। मेरे आका उस वक्त आलम नासूत में हैं और आलम बरजख की खबर दे रहे हैं, है कि नहीं? ये भी पता है कि अंदर वो क्या कर रहे हैं। हम किसी तेज रफ्तार ट्रेन में बैठ जाएं तो हमें बाहर का मंदर तेजी से गुजरता हुआ नजर आता है। कोई खड़ा हो या बैठा हो, लेकिन इतना अंदाजा नहीं होता कि नमाज पढ़ रहा है या ऐसे ही बैठा है। मेरे रसूल इससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी में सवार हैं, लेकिन देख इस तरह रहे हैं कि एक बात का पता चल रहा है कि मैंने हजरत मूसा को अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ते हुए देखा। लेकिन दोस्तों कभी गौर किया, ये नमाज का कौन सा टाइम था? रात का एक पहर गुजर चुका है। अकीदा अहले सुन्नत तो पता चल रहा है कि जो लोग दुनिया में जो बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन अंबिया अलैहि सलाम के मामूलात होते हैं, कब्र में भी वो जारी रहते हैं। हजरत मूसा की कब्र जाहिर है, इन बुजुर्गों की, इन मुकद्दस हस्तियों की कब्रें, इनको हमें अपनी कब्र पे कयास नहीं करना चाहिए कि एक छोटी सी खोखली हो। नहीं, इनकी कब्र अगर बड़ी होती है तो मशरिक से मगरिब तक फैल जाती है। लेकिन हजरत मूसा क्या पढ़ रहे थे? हदीस शरीफ में आया सलात पढ़ रहे थे। इस वक्त कौन सी नमाज थी? बड़ी तेजी के साथ हजरत हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचने वाले हैं और हजरत मूसा को वहां पर इस्तकबाल करना है, लेकिन अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। हमारे उलमा ने सुन्नत फरमाते हैं, सलात का एक माने नमाज भी है और सलात के माने दुरूद भी हैं। इस वक्त हजरत मूसा खड़े होकर सलात पढ़ने का मतलब ये कि सवारी मुस्तफा गुजर रही थी, जब हजरत मूसा की कब्र से गुजरी तो हजरत मूसा भी खड़े होकर हुजूर पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने लगे। जो खड़े होकर सलात पढ़ते हैं ना हम, या नबी सलाम अलैका, ये सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते, ये सभी पढ़ते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों से सरकार का गुजर हो तो अंबिया खड़े होकर उनका उनके लिए सलातो सलाम के नजराने पेश करते हैं। सरकार फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो सलात पढ़ रहे थे। और फिर ये सवारी मुकद्दस بیت المقدس پہ پہنچ گئی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو عزت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ اول جو ہے بیت المقدس وہ بدل کر بیت اللہ ہو جائے, اور ابھی تک یہ قبلہ اول ہی قبلہ تھا. کعبہ اس وقت تک قبلہ نہیں بنا تھا, لیکن حضور علیہ السلام کو کعبے سے بڑی محبت, تو سرکار جب نماز پڑھتے تھے تو سرکار کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کعبے کو بیچ میں کر لیا کرتے تھے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا, تو درمیان میں کعبہ بھی آ جاتا تھا. لیکن میرے رسول صرف کعبے کے رسول تو نہیں, بیت المقدس کے بھی تو رسول ہیں. اس لیے آج شہنشاہ کونو مکان اپنی مملکت کی سیر کرنے کے لیے نکلے تھے. جیسے کوئی بادشاہ اپنی مملکت کی سیر کرتا ہے, کبھی اس صوبے میں, کبھی اس صوبے میں, کبھی اس شہر میں, کبھی اس شہر میں. اور یہ کوئی میری میں تقریر کے جوش میں نہیں کہہ رہا. سرکار فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث کہ میرے چار وزیر ہیں, دو زمین پہ دو آسمان پر. زمین پر ابو بکر و عمر, اور آسمان پر جبریل اور میکائیل. اور وزیر وہی ہوتے ہیں جہاں مملکت ہوتی ہے, جو بادشاہت کے زمرے میں آتی ہے. ایسے نہیں کہ بادشاہ یہاں کے ہوں اور وزیر وہاں بیٹھے ہوں. ظاہر ہے وزیر اس کی مملکت کے اندر ہی بیٹھے گا. سرکار کی حدیث بتا رہی ہے کہ میں شہنشاہ کونو مکان ہوں, میں یہاں کا بھی شہنشاہ ہوں اور وہاں کا بھی شہنشاہ ہوں. اور یہ شہنشاہیت مجھے اللہ نے عطا فرمائی. خالق کائنات نے ان کو مالک کائنات بنا دیا. تو یہ وزیر آسمانوں پر بھی ہیں اور زمین پر بھی, اور آج شہنشاہ کونو مکان کا سفر ہو رہا. حضور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صف بصف کھڑے ہیں. اتنی عظیم ہستیاں, انسانیت کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ نبی ہے. کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی کتنی عبادت کر لے اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا نبی. جتنوں نے بننے کی کوشش کی سب راندہ درگاہ اور کذاب کرا دیتے گئے. نبی وہی ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے. کوئی معمولی ہستیاں نہیں کھڑی تھی. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں, حضرت موسیٰ تشریف فرما ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف فرما ہیں, حضرت نوح نجی اللہ تشریف فرما ہیں. بڑی بڑی ہستیاں سب تشریف فرما ہیں اور سب کو سرکار کی اقتدا میں کھڑا کر دیا. یہ کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ عالم اربع میں ان سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. قرآن پاک میں یاد کیجئے کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا, ان سے پیمان لیا تھا کہ جب یہ تمہارے زمانے میں تشریف لائیں تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. میرے رسول حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے کسی کے ظاہری زمانے میں تشریف نہیں لائے. یہ اللہ کا ایک قانون تھا, اللہ کی مشیت تھی. لیکن ہر نبی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہا. حضرت آدم کی توبہ میں رسول کا ذکر, حضرت نوح کی دعا میں رسول کا ذکر, حضرت ابراہیم خلیل کی دعا میں رسول کا ذکر, ہر ایک کی ہاں میرے رسول کا ذکر مل رہا ہے. اس لیے کہ وعدہ کر کے آئے تھے. اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے تو خوشخبری دے دی کہ میرے بعد جو تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا. یہاں تک بتا دیا. گویا یہ سب اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے تھے. لیکن اب عملی طور پہ مظاہرہ تھا कि ऐ तमाम ग्रोह अंबिया, तुमने जो वायदा किया था अब उस वायदे का अमली मुजाहरा इस तरह का करो कि मेरा हबीब इमाम हो और तुम सब उसके मुक्तदी हो। सरकार तशरीफ फरमा हो गए इमाम मुसल्ला इमामत पर और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पीछे खड़े और सब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिदा में नमाज अदा की। अब यहाँ पर एक इतराज होता है कि हजरत मूसा तो अपनी कब्र में सलात पढ़ रहे थे, हुजूर से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या रफ्तारे मूसा रफ्तारे मुस्तफा से ज्यादा है? अगर ज्यादा नहीं तो पहले कैसे पहुंचे? देखो नबी तमाम दीगर मखलूक में सबसे बुलंद बाला और अफजल आला होता है। मेरे रसूल से पहले जो वो पहुंचे तो वो अपनी रफ्तार से पहुंचे और मेरे आका जिस रफ्तार से पहुंचे वो रफ्तारे मुस्तफा नहीं थी बल्कि रफ्तारे बुर्राक थी और बुर्राक की रफ्तार हजरत मूसा की रफ्तार से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए पहले पहुंच गए। रफ्तारे मुस्तफा का तो अभी इजहार होना बाकी था और फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत फरमाई और फिर आसमानों का सफर हुआ कि सब आप जानते हैं। अब जिस आसमान पे जा रहे हैं हर आसमान पे कोई ना कोई नबी मौजूद है। कैसे? हजरत आदम ने अभी पीछे नमाज पढ़ी है, पहले आसमान पे पहुंचे तो हजरत आदम पहले से मौजूद है। यहाँ पर ये तमाम हदीसें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हम इन हस्तियों को अपने ऊपर कयास मत करो, ये एक आन की आन में कहीं से कहीं पहुंचते हैं और जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में होती हैं उस वक्त इनका कमाल इतना होता है, तो जब ये रूहें इस इस्तिग़फ़ानी ढांचे से निकलती हैं फिर इनकी परवाज कहीं से कहीं जाती है। हर आसमान पर मुलाकात हुई सरकारे अब्द करार जाने को नैन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैहि शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं कि जब पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा मैं हूं। जिब्रील, आवाज आई तुम्हारे साथ कोई है? कहा हाँ मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इनको बुलाया गया? हाँ इनको बुलाया गया, दरवाजा खुल गया, सरकार तशरीफ ले गए। हर आसमान पर ऐसा ही हुआ, पहले दरवाजा बंद, जिब्रील ने अपना नाम लिया, नहीं खुला, हुजूर के नाम पे दरवाजा खुल गया, आगे बढ़ते गए। सवाल पैदा होता है कि ये दरवाजे कौन से थे, ये दरवाजे बंद क्यों थे और हजरत जिब्रील के नाम लेने के बावजूद दरवाजे नहीं खुल रहे थे? जब सरकार का नाम लिया जाता था तो दरवाजे खुल जाते थे। हजरत जिब्रील के लिए इन दरवाजों की क्या जरूरत? वो तो एक आन की आन में आसमान और फिर जमीन, जमीन से आसमान, न जाने कितनी मर्तबा हर हर नबी के पास तशरीफ लाए हैं, हर हर नबी की बारगाह में हाजिर होते रहे, उनके लिए तो कोई मामला मुश्किल ही नहीं। पूछा गया जिब्रील कभी तेज रफ्तारी के साथ, इतनी तेज रफ्तारी के साथ कभी आए कि इससे पहले कभी नहीं? फरमाया हाँ, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था तो उन्होंने ऊपर से कुएं में फेंका, इधर मुझे हुक्म हुआ कि जिब्रील जाओ यूसुफ को अपने परों पर ले लो, मैं इतनी तेजी से जमीन पर आया कि इससे पहले कभी नहीं आया था। जरा लम्हात का अंदाजा तो करो, कोई ऊपर से कुएं से कोई चीज फेंके और तय तक पहुंचने में कितनी देर लगती है, और हजरत जिब्रील कोई बराबर नहीं खड़े थे, आसमान पर थे। हुक्म हुआ आसमानों से जमीन पे जाओ और मेरे यूसुफ को अपने परों पर ले लो। ये हजरत जिब्रील की रफ्तार है। एक मर्तबा जब जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम हजरत इस्माइल के हुक्म पे छुरी फेरने के लिए तैयार थे, हुक्म हुआ जिब्रील जाओ जन्नत से मेंढा लो और इस्माइल को हटाकर इब्राहिम की छुरी के नीचे कर दो। फरमाते हैं इतनी तेजी से जमीन पर आया कि इससे पहले कभी नहीं आया था। ये तो रफ्तार जिब्रील है कि आसमानों की जो मसाफतें हैं उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती, और उसकी मसाफत के लिए अंदाजा मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि जमीन से आसमान तक 80 बरस का फासला है अगर नूरी रफ्तार से सफर किया जाए, यानी रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए। 80 बरस के मैं तो आदमी के वैसे चलना फिरना मुश्किल हो जाता, इतना बड़ा सफर और वो भी रोशनी की रफ्तार से। आप देखते हैं रोशनी की रफ्तार कितनी तेज होती है, क्या आपने यहाँ से टॉर्च जलाई तो सामने तेजी के साथ रोशनी पहुंचती है। और फिर हर आसमान की मोटाई भी 80 बरस, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की क्या फासला भी 80 बरस। अब कैलकुलेट करते जाइए कितने बरस गुजर जाएंगे। और हजरत जिब्रील अमीन फरमाते तेजी के साथ जमीन पर आ गए। बहरहाल ये रास्ता था, दरवाजा बंद था, पूछा जाता था कौन है। अल्लामा सईदी फरमाते हैं कि बात ये थी कि ये एक अलग शाहरा तैयार की गई थी। जिब्रील अमीन जिस शाहरा से जिस रास्ते पर सफर किया करते थे, आसमानों से जमीन और जमीन से आसमान पर आते थे, वो शाहरा जिब्रील थी। ये जो आज मुकद्दस सफर कराया जा रहा था, ये शाहरा जिब्रील नहीं थी, शाहरा मुस्तफा थी। यहाँ से जिब्रील भी बगैर हुजूर के नहीं गुजर सकते थे, इसलिए जब हुजूर का नाम लिया गया दरवाजे खुल गए, सरकार तशरीफ ले गए और फिर आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, सिदरा का मकाम आ गया, बेरी का दरख्त है। सिदरा कहते हैं बेर को, लेकिन ये हमारे यहाँ के आपके दरख्त नहीं, बेरी का छोटे छोटे पत्ते, उसके लिए लिखा गया है कि पत्ते इतने बड़े थे कि जिस पर जो हाथी के कान के बराबर थे, और फल इतना बड़ा था जैसे मटके के बराबर, और हर पत्ते पर हर फल के ऊपर एक फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मसरूफ था। मेरे आका जाने को नैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, बुलंदी से बुलंद, बुलंद से बुलंद होते चले जा रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के सफर के 3 हिस्से हैं। एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये सरकार लिबास बशरी ज़ेब-तन फरमाए हुए हैं, और जमीन का सफर किया, फिर जमीन से आसमानों का सफर हुजूर ने मलकुती लिबास इख्तियार कर लिया। अब हर फरिश्ता सरकार को देख सकता है, सरकार की ज़ियारत कर रहा है। रास्ते में जितने भी फरिश्ते हैं सबको तैयार कर दिया गया कि मेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं, जो भी ज़ियारत करे। सरकार सिदरा पर पहुंच गए, हर पत्ते और हर फल का फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पेश कर रहा है, अल्लाह पाक की तस्बीह और तहलील बयान कर रहा है। मौलाना रूम ने अपनी मुस्तबी में लिखा कि एक दिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्रील तुम्हारी असल शक्ल क्या है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, मेरे 600 पर हैं जिन्हें फैलाऊं तो यहाँ नहीं फैला सकता, उसके लिए आप जब सिदरा पे तशरीफ लाएंगे तो जब दिखाऊंगा। जब हुजूर सिदरा पे तशरीफ ले गए, जिब्रील ने अपने 600 पर खोले और हुजूर को अपनी असल हयत दिखाई, असल शक्ल दिखाई। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये तो मेरी असल शक्ल थी जो मैंने सिदरा पे दिखा दी, मेरी अपनी हकीकत मैंने यहाँ दिखाई, हुजूर अब आप भी अपनी हकीकत दिखाएं। सरकार फरमाते मेरी हकीकत को देखना है तो सिदरा के पार आना पड़ेगा। सिदरा के पार आना पड़ेगा तो जिब्रील ने हाथ जोड़ दिए,
हुजूर अगर बाल पर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोख से मेरे पर जल जाएंगे। ये तजल्ली किसकी थी, किसकी तजल्ली के फरोख से मेरे पर जल जाएंगे। अब ये राज और नियाज की बातें हैं कि हम किसकी तजल्ली कहें। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि जिब्रील ये क्या बात हुई कि तुम मुझे यहां तक ले आए, अब आगे कह रहे हो कि आप चले जाएं, मैं बाल भर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोख से मेरे पर जल जाएंगे। ये नहीं फरमाया कि मैं यहां पहली मर्तबा आया हूं और मुझे आगे का क्या पता। नहीं, सरकार जानते थे कि ये जिब्रील के मकाम की इंतहा है और मकाम मुस्तफा की इब्तिदा है। वहां पर दोनों अपने अपने मकाम से वाकिफ थे। जिब्रील ने भी नहीं कहा कि हुजूर जब मैं नहीं जा सकता तो आप कैसे जा सकते हैं, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मलाइका का सरदार हूँ, ताइरे सिदरा हूँ, सैयदुल मलाइका हूँ, कितने तमाम अंबिया अलैहि सलाम का सहाबी हूँ, पैगंबर फरिश्ता हूँ, हुजूर जब आप आगे जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। जिब्रील अपना अकीदा बताते हैं, वही अकीदा है जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि ना तो हम हुजूर की तरह हो सकते हैं ना हुजूर हमारी तरह है। सरकार का एक अपना मकाम है। पूछते हैं, ऐ जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। बताना था कि मैं जिब्रील के लिए भी हाजत रवा बनकर आया हूं। ऐ लोगों, मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, जिब्रील की भी कोई हाजत होती है तो मेरे ही वसीले से मांगता है। हजरत जिब्रील ने ये नहीं कहा, हुजूर मैं तो डायरेक्ट मांग सकता हूँ, मैं तो अल्लाह ताला का इतने करीब हूँ, अल्लाह के एक एक हुक्म पर एक एक वही लेकर आया हूँ, तौरे तो इंजील और दुबूर में को लाने में उसकी कितनी आयतें लेकर आने वाला मैं हूँ, हामिले वही इलाही हूँ। हुजूर मेरी हाजत हो तो मैं अल्लाह से डायरेक्ट मांगू। जिब्रील जानते थे कि मेरी भी हाजत अगर पूरी होगी तो जाने कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। अर्थ की, हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि कल कयामत के रोज जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो जिब्रील के पर बिछे हों और आपकी उम्मत उस पे से गुजर रही हो। ये जिब्रील ने अपनी हाजत हुजूर की बारगाह में पेश की और पूरी कायनात को बता दिया कि मेरी तमाम अजमतें, मेरी तमाम बड़ाई, मेरी तमाम बुजुर्गी जो अल्लाह ने अता की है, ये सब इन्हीं का तो सदका है। सरकार और आगे बढ़ गए। अब्बुर राख भी रुक गया, जिब्रील भी रुक गए। सरकार के लिए एक सब तख्त रफ रफ लाया गया, मेरे रसूल उस पर तशरीफ फरमा हुआ और आगे बढ़े। अब तक तो मामला जमीन का था या आसमान का था या सिदरा का था, अब तो सरकार उससे आगे बढ़ गए। हमारे यहां तो मकान है और मकान की तारीफ जमीन होती है, छत होती है, दीवारें होती हैं। जमीन तो काफी अरसे पहले नीचे रह गई थी, आसमान की छत भी नीचे रह गई, कोई दीवार नहीं, कुछ भी नहीं, और सरकार वहां तशरीफ फरमा हुए जिसे ला मका कहते हैं। मुझे बताओ, उस मकाम को तो ला मका कह दिया, जब कुछ समझ में नहीं आया तो कहा ला मका है। जाहिर है हम तो मकान तक ही जानते हैं, और मकान नहीं होगा तो ला मका होगा, यानी मकान नहीं है, है क्या ये नहीं पता। ला मका वो मकाम क्या था, मकाम का लफ्ज भी कह नहीं सकते क्योंकि मकाम में भी कोई ना कोई ऐसा मकाम आता है जहां जमीन, जहां पांव रखा जा सके। वहां तो कोई ऐसी चीज ही नहीं जहां पांव रखा जा सके, दरो दीवार नहीं। लेकिन ये नहीं कहा गया कि सरकार का सफर रुक गया, मेरे रसूल का तो अपना सफर जारी है। थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि वो मकाम तो नहीं था, वो मकान भी नहीं था, वो तो लामका था, लेकिन ये तो बताओ उस वक्त मुस्तफा खुद क्या थे, खुद क्या थे वो। बशरियत तो जमीन पे रह गई, मलकुतियत आसमानों पे रह गई, अब क्या थे ये वो जाने और उनका रब जाने कि वो कौन थे। मेरे रसूल आसमानों से लामकान से गुजर गए,
सरकार का सफर जारी है। अब कोई नहीं बता सकता कि उस वक्त मुस्तफा क्या थे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब हजरत अबू बकर से फरमाया, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत अबू बकर से फरमाया, वो सहाबी जो सफर में साथ है, गारे सौर में साथ है, मक्के में साथ है, मदीने में साथ है, जंगों में साथ है, हर जगह साथ रहने के बावजूद हकीकत से वाकिफ नहीं। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए तो फरमाया था कि इतना करीब रहने वाला सहाबी जब मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं तो और तुम लोग क्या वाकिफ हो सकते हो। हजरत जिब्रील भी साथ साथ चले थे, जब तक लिबासे बशरियत में देखा साथ चलते रहे, जब तक लिबासे मलकूतियत में देखा साथ चलते रहे, लेकिन जब हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहिजाब होने लगी तो हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर बाल भर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोख से मेरे पर जल जाएंगे। सरकार आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो फिर आवाज आई, किफ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद ठहरिए, आपका रब आप पर दुरूद पड़ता है। गौर तो करो, क्या मकामे मुस्तफा है, क्या मकामे नाथ था। सारी बुलंदियां मखलूक की सारी बुलंदियां नीचे रह गईं। अल्लाह ने अपने हबीब को मखलूक में सबसे बुलंद वाला और अफजल वाला कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि किस नबी के तुम उम्मत से हो, किसके दामन से वाबस्ता हो। जिनकी जात पर अंबिया फखर करें, जिनकी जात पर औलिया फखर करें, जिनकी जात पर सैयदुल मलाइका फखर करें। अल्लाह फरमाता है, दुरूद पढ़ रहा हूं, ऐ मोहम्मद करीब आइए, ऐ अहमद करीब आइए। और ये कुर्ब करीब करीब से करीब होता गया। कुरान कहता है, सुम्मा दना, सूरह नजम के अंदर, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन अव अदना। इतने करीब हुए कि दो कमानों का फासला, बल्कि इससे भी कम। मेरे रब ने इस बात को छुपा दिया, अब इससे कम कितना था। जब दो कमानों का फासला भी खत्म हो गया तो इससे कम कितना था। आला हजरत को कहना पड़ गया, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मेरे रसूल अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंच गए। ऐ हबीब, जब कोई दोस्त किसी दोस्त से मिलने आता है तो कोई तोहफा लाता है, ऐ महबूब तुम क्या तोहफा लाए। या अल्लाह, तेरी बारगाह में क्या तोहफा पेश करें। सब कुछ तो तू तेरा ही है, हर चीज का खालिक और मालिक तो तू ही है, बनाने वाला तो तू ही है। तेरी ही बनाई हुई चीज तेरी बारगाह में पेश करें तो तोहफा क्या। लेकिन मेरे रसूल अर्ज करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, ऐ इलाहुल आलमीन, मेरी तमाम तहज्जुद सना, मेरी तमाम तस्बीह और तहलील ऐ अल्लाह तेरे ही लिए तो है। फिर रब्बुल आलमीन फरमाते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये वो सलाम है, हम लोग हर नमाज में ये मुकद्दस कलिमात मकाल में जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, महबूब और मुहिब के दरमियान हुए, वो हम पढ़ते हैं इस मौके पर। आज अजीब और गरीब लोग हैं, कहते हैं हुजूर का नमाज में ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, माद अल्लाह, इतनी जुर्रत हो गई। अत्तयात वो पढ़ते हैं जो हुजूर और अल्लाह के आपस दरमियान मकाल में है, उसके बावजूद इनको हुजूर का ख्याल नहीं आता। कितने जालिम लोग हैं कि अत्तयात पढ़ते हुए भी अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी कहते हुए भी हुजूर का ख्याल नहीं आता। ये मेरे रसूल को अल्लाह तबारक वताला ने वो सलाम किया कि जो उस सफर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे आला और मर्तबा अता फरमाने के बाद इरशाद फरमाया। और यहीं से अकीदा अहले सुन्नत
कि जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज में सलाम पेश करते हैं तो हम जानो दिल से सरकार का तसव्वुर करके सलाम पेश करते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं कि जिसको सलाम करें कहते हैं उसको बगैर ख्याल के सलाम करो। आज हम और आप एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को समझकर सलाम करते हैं और ये ऐसे नादान हैं कि सब जानते बूझते फिर कहते हैं भूल कर सलाम करो। मेरे रब ने इसको हर नमाज के अंदर रख दिया कि जब तक तुम उन उस गुफ्तगु को अपनी नमाज का हिस्सा नहीं बनाओगे जो मैंने अपनी मोहब्बत के साथ अपने हबीब के साथ की थी उस वक्त तक तुम अपनी नमाज से निकल नहीं सकते। बगैर तैयार के कोई निकल सकता है? ये अहम है, जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाम हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को अपना सलाम अपनी तरफ से सलाम अता फरमाया और ये मखलूक में किसी को सबसे ज्यादा बुलंद बाला और अफजल वाला बनाना था। और फिर क्या गुफ्तगू हुई आपस में, क्या मकान में हुए, ये महबूब जाने और उसका मुहिब जाने। और ये गुफ्तगू हुई आखिर में जो हम जानते हैं कि हमारे लिए सरकार ने गुनाहगार उम्मत को वहाँ याद रखा, अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत के लिए 50 नमाजें अता फरमा दी। अब फिर वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई और ये सब आप जानते हैं कि छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े थे और पूछ रहे थे कि हुजूर आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफा मिला। सरकार ने फरमाया 50 नमाजें। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। हजरत मूसा ने कितनी सच्ची बात कही थी, आज 5 नहीं पढ़ते 50 कहाँ पढ़ दिया। हुजूर ने फरमाया अच्छा, कहा हुजूर कुछ कम करा के आइए। सरकार तशरीफ ले जाते रहे, आते रहे जाते रहे, 50 की 5 करवा दी। यहाँ पर कभी तुमने एक बात गौर की कि नमाजें कम हो रही हैं दो हस्तियों की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला अपने दो नबियों के वसीले से नमाज को कम कर रहा है, तादाद नमाज को कम कर रहा है। एक नबी का ताल्लुक आलम बरज़ख़ से है और एक नबी का ताल्लुक आलम दुनिया से। उस वक्त ज़ाहिरी हयात में है सरकार, आलम नासूस से है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरी बारगाह में अगर कुछ मांगना है, कुछ आसानी पैदा करनी है तो मेरे महबूबों का वसीला लो, खा वो जमीन पर हो या जमीन में हो, जिस तरह भी हो तुम उनका वसीला लो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। हजरत मूसा कब्र वाले हैं, बताना था कि कब्र वाले मदद कर सकते हैं। और हुजूर अलैहि सलाम उस वक्त आलम दुनिया में हैं, आलम नासूत में हैं, जाहिरी हयात में हैं। बताया कि अगर जाहिरी हयात में तुम्हें कोई मेरा महबूब मिले तो उनसे भी फायदा हासिल करो और अगर वो अपनी कब्र में चला जाए तो उनकी उस कब्र वाले से भी तुम फायदा हासिल करो। और हम अहले सुन्नत अपने जाहिरी बुजुर्गों से भी फायदा हासिल करते हैं और अपने बुजुर्गों के मदारात से भी फायदा हासिल करते हैं। और अगर कोई तुमसे कहे कि कब्र वाले मदद नहीं कर सकते तो कहना 50 नमाजें पढ़ो, फिर 5 नहीं पढ़ो। हजरत मूसा कब्र वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वसीले से हुजूर की बारगाह में उन्होंने अर्ज की, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, नमाजों की तादाद कम हो गई। तो हमारा अकीदा साबित हुआ कि नहीं हुआ? इन लोगों से लड़ा नहीं करो, बस बता दिया करो कि सफर मेराज गौर से पढ़ लो और समझ लो ये हदीस और कुरान से है, कोई हमारा बनाया हुआ वाकया नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत इस पूरे सफर मेराज के अंदर साबित होता है। आपने एक बात गौर की कि यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सफर का आगाज किया था और रास्ते में हजरत मूसा की कब्र का जिक्र किया कि मैंने कसीब अहमर में हजरत मूसा को नमाज पढ़ते हुए सलात पढ़ते हुए देखा अपनी कब्र के अंदर, यहाँ जिक्र किया कब्र का। मेरा यकीन और विद्वान कहता है कि जब मेरे रसूल मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जा रहे थे तो रास्ते में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे और अपनी कब्रों में वो सब सरकार पर खड़े होकर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे होंगे और सबकी कब्रों से सरकार वाकिफ होंगे। लेकिन जिक्र सिर्फ हजरत मूसा का किया क्योंकि आगे नमाजों के मामले में हजरत मूसा उम्मत के काम आने वाले थे, बताना था कि कब्र वाले मदद कर सकते हैं। ये सूरत हाल हुई और हजरत मूसा का भी काम बन रहा था। अर्ज किया था इलाहल आलमीन तुझे देखना चाहता हूँ, जवाब आया था लन तरानी तुम हरगिज नहीं देख सकते। एक तजल्ली दरख्त पे डाली तूर के दरख्त पर, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। उलमा फरमाते हैं वो तजल्ली सुई के नाके के भी करोड़वें हिस्से के बराबर थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, बेहोश हो गए। मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम ये नहीं फरमाया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं किसी को बर्दाश्त की सलाहियत देने वाला हूँ। एक मेरा महबूब मेरी बारगाह में आने वाला है जिसको मैं अपने दीदार से नवाजूंगा और वो खुली आंखों से मेरा दीदार करेगा। मा दागल बसर व मा तगा, जब सरकार ने दीदार किया ना तो आंखें फटी की फटी रही ना ही पलक झपकी, बल्कि खुली आंखों से अपने रब का दीदार किया। सलाम उस पर के जिसने इसको उसको सबको देखा है, सलाम उस पर के जिसने इसको उसको सबको देखा है, और सलाम उस पर के जिसने चश्मे सर से रब को देखा है। मेरे आका जाने कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली आंखों से रब को देखा और कितनी मुकद्दस आंखें थीं जो अपने रब का दीदार कर रही थीं। उलमा फरमाते हैं मस्जिद हराम से चले तो मस्जिद हराम की मेराज, मस्जिद अक्सा पहुंचे तो मस्जिद अक्सा की मेराज, आसमानों का सफर किया तो आसमानों की मेराज, जिब्रील साथ रहे तो जिब्रील की मेराज, और जब काबा कौसैन की मंजिलों से गुजर गए तो फिर रसूल की मेराज, ऐसी मेराज अता हुई। आप फिर जब नमाजों का यह तोहफा कम करते करते पांच हुआ तो जब भी हजरत मूसा ने फरमाया था हुजूर ये भी नहीं पढ़ सकते, तो मेरे रसूल ने जो बात कही थी वो हम सब के लिए बड़ी अहमियत रखती है। सरकार ने फरमाया अब मुझे अपने रब की बारगाह में इसलिए जाते हुए हया आती है कि मेरी उम्मत पांच भी नहीं पढ़ सकती। इस बात पे सरकार हया फरमाए और आज हम ऐसे बेहया हो जाएं कि हम नमाजें छोड़ दें, नमाजों से गफलत इख्तियार कर लें। मेरे रसूल जो अपनी उम्मत के लिए इतना शानदार तोहफा लेकर आए उन नमाजों से हम गाफिल हो जाएं तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। कल हम उनकी बारगाह में क्या मुंह लेकर जाएंगे अगर हम इन्हीं गफलत के साथ गाफिल बन के नमाजों को छोड़ते रहे। आइए आज इस मुकद्दस रात में जो नमाज की फर्जियत की सालगिरह की रात है, इस रात में आज अहद करें कि ऐ इलाहल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाएं कि इंशाअल्लाह हम आज से कभी कोई नमाज जानबूझकर कदा नहीं करेंगे, और जो नमाजें कदा हो गई उनकी भी कदा अदा करने की कोशिश कीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार फरमाते हैं हदीस शरीफ का मफहूम है जो नमाज छोड़ देता है मेरा दिल चाहता है कि उसके घरों को आग लगा दो। सरकार इतने जलाल में आते हैं रहमतुल्लिल आलमीन हैं लेकिन नमाज के मामले में सरकार का जलाल मुलाहिदा करो, जरा गौर करो आज जो घरों के अंदर सब कुछ हो रहा है, बेबरकतियां हो रही हैं, मामलात खराब हो रहे हैं, ये हमारी अपनी गफलतों की वजह से है। आइए नमाज की पाबंदी का अहद करके हम इस मजलिस से उठें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के में तशरीफ ले आए। अब जब सुबह हुई तो मेरे आका ने इस सफर का ऐलान फरमा दिया। अब तक तो मामला जमीन का था, अब काफिरों ने चीमा गोइयां शुरू कर दी। ये क्या बात हुई, ये तो अब आसमानों पर जाने लगे और रात ही रात में चले भी गए और आ भी गए, ये कैसे हो सकता है। यही बात मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज पर दलील है। बाद लोग कहते ना नहीं ख्वाब में मेराज हुई, अगर ख्वाब में होती तो फिर एतराज की बात क्या थी। अबू जहल को परेशान होने की क्या जरूरत थी, कह देता कि ख्वाब नजर आया है, देख लिया होगा इन्होंने, उसे पता था कि ये जो फरमा रहे हैं मैं जिस्म और रूह के साथ मैंने आसमानों की सैर की और अल्लाह रब्बुल इज्जत के क़ुर्ब खास कराया। इस बात पर जो उनको एतराज हुआ, ये यही दलील है कि हुजूर जिस्म और रूह के साथ तशरीफ ले गए। और इसी की तस्दीक पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक का लक़ब अता हुआ। और इन काफिरों ने कहा अच्छा आके बैठ गए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है कि तुम आज तक बैतुल मुकद्दस नहीं गए, बताओ मस्जिद अक्सा की कितनी दीवारें हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने पिलर हैं, सुतून हैं। अब बताइए कैसा अजीब सा सवाल था। हम अपनी बनाई हुई इमारतों की ऐसे तादाद नहीं बता सकते। अब ये हमारे शाहिद साहब रोजाना फजर में होते हैं, इनसे पूछें जामा मस्जिद कुतुब रब्बानी में कितने पिलर हैं, चारों तरफ पहले गिनेंगे फिर बताएंगे कि हाँ इतने पिलर। इसलिए कि यहाँ पर कोई पिलर गिनने के लिए नहीं आता, अल्लाह की नमाज अदा करने के लिए आता। नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम तो मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा देखने के लिए नहीं गए थे बल्कि मस्जिद अक्सा को अपना दीदार कराने गए थे। जब ये बात सवाल हुआ तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने कर दिया। वो सवाल करते गए, मैं देखता गया और उनको जवाब देता गया, इसके बाद भी नहीं माने। फिर सरकार ने फरमाया तीन काफिले मैंने देखे रास्ते में, एक सुबह सादिक के वक्त पहुंचेगा, एक निस्फ नहार पे पहुंचेगा और एक ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पहुंचेगा। ये बड़ा अहम इम्तिहान था, बड़े खुश हुए क्योंकि अब तक जो खबर थी वो माजी की थी, गुजरे हुए वक्त की थी, और अब जो खबर दी जा रही थी वो आने वाले वक्त की थी। सारे पहाड़ी पे चढ़ गए, इधर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी देखने के लिए चढ़ गए। जैसे ही सूरज तुलू हुआ काफिरों ने कहा देखो सूरज तुलू हो गया, मुसलमानों ने कहा काफिला सामने आ रहा है। दूसरा काफिला हुजूर के फरमान के मुताबिक निस्फ नहार दिन के वक्त पहुंचा, और तीसरा जैसे ही सूरज गुरूब हुआ का सूरज गुरूब हो गया, मुसलमानों ने कहा तीसरा काफिला भी आ गया। मुखबिर सादिक ने जो जो खबर दी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पूरा करके दिखाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कितना प्यारा और अजीम शान सफर है। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक बात आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत से लोग हुजूर अलैहि सलाम के सफर हिजरत पर एतराज करते हैं कि देखो वो काफिरों से खौफजदा होकर अपनी जान बचाकर मक्के से मदीने की तरफ चले गए। ऐसा नहीं था, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के खौफ के अलावा किसी का खौफ नहीं था। सरकार ने जो भी सफर इख्तियार किया बड़ा मुशक्कत वाला सफर था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक सफर तो ऐसा हुआ कि एक आन की आन में मक्के से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, पूरी कायनात का सफर तय करके रात ही रात में पहुंच गए। और दूसरे सफर के लिए फरमाया जा रहा है ए हबीब अपने बिस्तर पर अली को लिटा दो, दुश्मनों के ऊपर खाक फेंकते हुए निकलो, ये तुम्हें नहीं देख सकेंगे, अबू बकर को साथ लो, तीन दिन और तीन रात गारे सौर में रुको, फिर वहां से चलो, रास्ते में जो जो मामलात हों, जो जो परेशानियां हों, इन सब को सहते हुए मदीना तैयबा पहुंचो। क्या मेरे रब की ये कुदरत नहीं थी कि मेरे रसूल को एक आन की आन में मदीने पहुंचा दिया जाता है कि नहीं? कभी गौर किया तुमने? دو سال بعد ہی تو یہ سفر ہو گیا. بتانا تھا کہ میرا حبیب مامور من اللہ ہے, میں جس طرح کہتا ہوں یہ کہتا ہے جو رب کی رضا وہ میری رضا. یہ ہر چیز میں اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دیتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے حبیب ان قریب ہم آپ سے راضی ہوں. یہ رسول کی رضا, وہ سفر ایک آن میں ہو گیا اور یہ سفر مہینوں گزر رہے ہیں, دن گزر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اے حبیب یہ سفر کے اندر ہمیں تمہاری شان بشریت, شان ملکوتیت, شان اور حقیقت یہ ساری دکھانی ہے اور بتانی ہے کہ میرا حبیب کس طرح سفر کر سکتا ہے. لیکن اے حبیب ذرا اب اس طرح بھی سفر کرو کیونکہ تمہارے غلام بڑی تکلیف میں سفر کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مدینے پہنچ کر کہیں کہ یہ رسول تو ایک آرام سے آ گئے, ہم اتنی تکلیفیں اٹھا کر آئے. اے حبیب اپنے غلاموں کے خاطر یہ تکلیف اٹھاؤ. یا رسول اللہ آپ پر آپ کی کتنی کرم نوازی, غلاموں سے اتنی محبت کہ یہ نہیں کہا اے الٰہی العالمین دو سال پہلے جس طرح سفر کرایا تھا یہ بھی کرا دے. نہیں, جس طرح تو راضی ہے میں اسی طرح سفر کروں گا. اے حبیب معاملہ یہ ہے کہ وہ سفر بھی اس انداز میں تھا کہ لوگوں کو ہمیں انعام و اکرام بانٹنے تھے, اور یہ سفر بھی اس طرح ہے کہ جب علی تمہارے بستر پر لیٹیں گے تو یہ علی کے مرتبے میں اضافہ کرے گا. جب ابو بکر تمہاری خدمت میں ہوں گے تو یہ ابو بکر کو خدمت کا صلہ ملے گا. تین دن اور تین رات غار ثور تمہیں اپنی آغوش میں لے گی تو قیامت تک یہ غار ثور عظیم غار کہلائے گی. اے حبیب آگے بڑھتے جاؤ, راستے میں جب سراقہ تمہارا پیچھا کرے گا تو اس کو کنگن کی بشارت دے دینا تاکہ دنیا جان لے کہ 30 سال بعد والے جو کچھ ہونے والا ہے نبی آج وہ خبر دے رہا ہے. یہ نبی کسی خوف سے نہیں سفر کر رہے بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر کر رہے ہیں. اے حبیب اور آگے بڑھنا, محبت کے گھر پہ جانا اور وہاں جا کر تمہارے غلام ابو بکر کہیں گے کہ کچھ کھانے کو ہو تو دینا. وہ کہے گی کہ بکری ہے, بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے, تو اس کی بکری کے کھیرے پہ ہاتھ لگا دینا اور اس کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دینا, اور تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو کہ یہ رسول لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ دینے کے لیے آیا ہے. اے حبیب اسی طرح سفر کرتے رہو, تمہارا یہ سفر بھی ممتاز ہوگا اور وہ سفر بھی ممتاز ہوگا. اس سفر میں بھی تم خیرات بانٹو گے زمین و آسمان والوں کے لیے, اور اس سفر میں تم زمین والوں کو خیرات بانٹتے چلے جاؤ گے, صحابیت کے مقام عطا کرتے جاؤ گے, ابو بکر و علی کو مقام خدمت گزار والا بنا دو گے, ام محبت کے گھر میں برکتوں کے انبار لگا دو گے. اے حبیب آگے بڑھتے چلے جاؤ, جہاں جہاں تم قدم رکھو گے ہم اس مقام کو برکتوں والا بنا دیں گے. اے حبیب قبا پہنچ کر مسجد کی بنیاد رکھ دینا, تمہارا ہاتھ لگے گا تو ہم بتائیں گے کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اے حبیب آگے بڑھنا, پھر تم مدینہ طیبہ پہنچنا, یہ تمہارا مدفن ہوگا, یہ تمہارا مقام ہوگا. میرے رسول نے کتنے پیارے پیارے سفر کیے ہیں, کبھی ایسا سفر کیا کہ جناب آن کی آن میں کر دیا, اور کبھی مشقتوں والا سفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا آ جائے, ہجرت کرنا آ جائے, مشقتیں اٹھانے آ جائیں, تکلیفیں اٹھانے آ جائیں, اور دنیا یہ نہ کہیں کہ یہ رسول صرف اپنے لیے زندگی گزارتا ہے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں نے ضمناً سفر ذکر کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے میں مدینے پہنچ سکوں گا یا نہیں. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا, اور یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ہر بات کا علم عطا فرما دیا. عزیزان گرامی, یہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے آپ حضرات اس سفر سے اچھی طرح واقف ہیں. ہر سال ہم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہ اس لیے تاکہ ہماری روح میں تازگی پیدا ہو جائے. ہر हम जाने कौन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकद्दस सफर का जिक्र करते हैं तो हमारे रूह के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है, कल्ब के अंदर एक नूरानियत पैदा हो जाती है। तो ये जिक्र किया करो, ये महफिलें इन महफिलों में शिरकत किया करो और फिर अपने आका जाने कौन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करो। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि ऐ इलाही आलमीन, मैंने जो कुछ भी बयान किया है अगर इसमें किसी किस्म की गलती हो, दिखावा हो या मेरे नफ्स का शायबा हो, ऐ इलाही आलमीन इन मुसलमानों की जूतियों के सदक़े में, इस नजराने जूतियों के सदक़े में मुझे माफ़ फरमा दे। और अगर इसमें तेरी रजा मकसूद है तो मेरे प्यारे आका जाने कौन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक से लगे हुए जर्रों के सदक़े में इस नजराने को मंजूर मकबूल फरमा, मेरे लिए दरिया निजात बना, हम सब के लिए उखरवी निजात का सबब बना, हमारी इस हाजरी को मंजूर मकबूल फरमा और हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व शफ़ात से मुशर्रफ़ फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।